تفسير سورة الانبیاء آیت نمبر 30 سے 33 تک. اللہ رب العزت نے توحید کے لیے جو ہے وہ پوزیٹیو مثبت دلائل دیے ہیں. ویسے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے مکہ اور مشرکین جو تھے وہ کیا کرتے تھے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیوں کا مطالبہ کرتے تھے, معجزات کا مطالبہ کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اپنی کائنات سے, کائنات کے نظام سے چند واضح نشانیوں کی طرف اشارہ کیا ہے, اور یہ دلائل ہیں توحید اور آخرت کے. اولم یر الذین کفروا, کتنا زبردست انداز ہے. اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے, کیا انہوں نے نہیں دیکھا. اولم یر الذین کفروا, آپ یاد رکھیں کہ ہمیشہ سوالیہ انداز جو ہے وہ سوچنے سمجھنے پر آمادہ کرتا ہے, اور یہاں پہ یرا دیکھنا جو ہے اس کا مطلب ہے غور و فکر کرنا. تو کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا, کیا انہوں نے کائنات کے نظام کو نہیں دیکھا. کفارو کفر کرنے والے, رسول کا انکار کرنے والے, قرآن کا انکار کرنے والے, توحید کا انکار کرنے والے. ان السماواتی والارض, کہ آسمان اور زمین, کائنات دونوں تھے, اصل میں کائناتان تھا اور کاف و نون اس کا روٹ ہے, اور کائناتان کا الف کے بعد کا نون گر چکا ہے, کہ آسمان اور زمین دونوں تھے. رتقن, را تا قاف جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا, بند ہونا, دو چیزوں یا کئی چیزوں کا مل کر جڑ جانا, کہ آسمان اور زمین جو تھے یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے, بند تھے, ایک چیز تھے. پھر کیا ہوا, ففتقناہما, پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا. تو ففتقناہما کا روٹ ہے فاتقاف, اس کے معنی ہے کسی چیز کو پھاڑنا, کھولنا اور پھر اس کو الگ الگ کر دینا. کسی چیز نے بڑا سا شگاف ڈال کر اسے کھول دینا, یا دو متصل ملی ہوئی چیزوں کو الگ الگ کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا معجزہ کم ہے, کیا لوگوں کو یہ بات نظر نہیں آتی, کیا وہ غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے, پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا. وجعلنا, اور بنایا ہم نے, من الماء, پانی سے, کل شیء حی, ہر زندہ چیز ہم نے پانی سے پیدا کی. افلا یؤمنون, کیا یہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے. تو یہاں پر دو معجزات کا ذکر کیا گیا ہے, جن میں سے پہلا معجزہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی حقیقت جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھی گئی ہے. اب آپ دیکھیے کہ یعنی زمین اور آسمان کے بارے میں جو ہے وہ پہلے کیا نظریہ تھا, کہ یعنی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ 1900 میں, اس کی ابتدا میں سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا کہ دور دراز کے ستاروں سے آنے والی روشنی کی جو ویو لینتھ ہے ان میں اضافہ ہو رہا ہے. اور جو سائنسدان ہیں یہ کیا کہہ رہے تھے, ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو موجودہ دنیا ہے, یہ جو موجودہ نظام ہے, پہلے ایسا تھا کہ یہ سارا کچھ جو ہے بس ایسا ہی تھا جیسے کہ گرد و غبار کا تودا, اور کوئی 13 بلین سال پہلے جو ہے یہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ سے پیدا ہوئیں, اور پھر یہ گرد و غبار اور گیسیں جو ہے اس کائنات کے اندر ایک بڑے دھماکے کے ذریعے, جس کو یہ بگ بینگ کے نام سے یاد کرتے ہیں, کہ اس سے جو ہے یہ وجود میں آ گئیں. اور اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے اس کو پلان کے ساتھ ایسا کیا, کہ پہلے یہ آپس میں بالکل آپس میں گڑمڑ تھے. تو کائنات کا آغاز ایسے ہوا کہ یہ آسمان اور زمین آپس میں گڑمڑ تھے, کئی چیزیں تھیں جو آپس میں ملی ہوئی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے کھول کر ان کو, زمین اور آسمان کو الگ کیا, اور جتنی گلیکسیز ہیں جو اجرام فلکی ہیں इनको फिर अल्लाह ताला ने जो है वो पैदा कर दिया। तो यहां पर जो है वो अल्लाह ताला कायनात की हकीकत बता रहे हैं। और अब जो साइंसदानों का मौजूदा नजरिया है, यानी बाज लोग जो है क्या कहते हैं कि बस ऐसे ही बिग बैंग का जो इनका नजरिया है कि उसके जरिए से जो है वो कायनात वजूद में आई है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कह रहे हैं कि बकायदा एक प्लानिंग के तहत जो है हमने ये जमीन और आसमान जो है इनको अलग किया। अच्छा, अब इसमें ये बात याद रखने वाली है यहाँ पर कि ये आपस में आसमान और जमीन की जो तखलीक है, पहले क्या था कि ये एक बंद था, जैसे बिल्कुल एक ही चीज थी। आसमान से बारिश नहीं होती थी, जमीन पर कोई पौधा नहीं उगता था, कट्ठे ही थे दोनों ना। फिर अल्लाह ताला ने इसी मादे से आसमान और जमीन को पैदा किया और उन्हें जो है वो अलग कर दिया। आसमान को ऊपर उठा दिया और जमीन को इसकी जगह पर रहने दिया। आसमान से बारिश नाजिल होने लगी और जमीन में पौधे जो है वो उगा दिए। तो यहां पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है इस आयत में आसमान और जमीन पहले इकट्ठे थे, फिर इनको अलग किया। तो ये अल्लाह ताला ने अपनी वाहदनियत, अपनी उलूहियत, अपनी खालकियत जो है इस पर दलाइल दिए हैं, क्योंकि मुशरिक जो थे, जो शिर्क करने वाले थे, वो इस पर गौर व फिक्र जो है वो नहीं करते थे। तो ये है पहली दलील। अच्छा, अब आपको ये लफ्ज कैसे याद हो कि रतकन भी और फफतक नाहुमा, बिल्कुल दोनों जो हैं ये नए लफ्ज हैं। तो कैसे आप याद करें कि रतकन का बंद मतलब है बंद और फतकन का मतलब है खोल देना। तो मैंने ऐसे याद किया था, मैंने सोचा था कि जो रा से है ना, रा पहले होती है और फा बाद में होती है। तो हुरूफ तहजी में रा पहले होती है और फा बाद में होती है। तो आसमान और जमीन भी पहले क्या थे, वो बंद थे और फिर अल्लाह ताला ने उनको खोल दिया। तो पहले जो बंद थे उसके लिए रा से शुरू होगा रतकन, और फिर खोल दिया तो उसके लिए फा से शुरू होगा फतकन। तो आप भी जब याद किया करें तो आप कोई ना कोई निशानी जो है वो रख लिया करें, तो इस तरह जो है वो याद करना आसान हो जाता है। तो यहां पर भी यही बात बताई जा रही है कि आसमान और जमीन वहां मिले हुए थे, फिर हमने इन्हें जुदा कर दिया। तो हमने इन्हें फाड़ कर जुदा कर दिया, तो अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया, आसमान अलग कर दिया, जमीन अलग कर दी, और गैलेक्सीज जो थी वो वजूद में आई और कायनात का निजाम जो था वो चलने लगा। फिर मजीद इसकी हकीकत क्या है, तो ये अल्लाह इसकी हकीकत जो है वो बेहतर जानता है। और दूसरी दलील क्या है कि वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय, और हमने पानी से हर जिंदा चीज जो है वो पैदा की। यहाँ पे ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरी दलील जो है वो बताई है कि हर वो चीज जिसमें जिंदगी के आसार पाए जाते हैं, इसकी जिंदगी की वजह उसका पानी होता है। नबातात हैं, हैवानात हैं, इंसान है, तो तमाम चीजें पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। या यूं भी कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने हर चीज, जानदार चीज को पानी से पैदा किया। जैसे सूरत नूर में है, वल्लाहु खलक कुल्ला दाबतिन मिम्मा, और अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। तो ये जो है ये अल्लाह ताला जो है वो दूसरी दलील जो है वो दे रहे हैं। तो मुफस्सरीन ये कहते हैं कि समंदर के पानी में मौजूदा नमकियात का तनासुब वही है, परसेंटेज वही है जो इंसानी खून में जो है मौजूदा नमकियात का होता है। तो लिविंग सेल्स में पानी एक लाजमी जुज के तौर पर पाया जाता है। चांद पर जब लोग गए थे तो उन्होंने भी ये देखा था कि वहां पे पानी है कि नहीं, कि वहां पे जिंदगी के आसार जो है वो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो है यही चीज जो है वो बताई जा रही है कि दूसरी दलील कि अल्लाह ने हर चीज को पानी से पैदा किया। अफला युमिनून, क्या फिर ये ईमान नहीं लाते, क्या ये हमारी खालकियत को नहीं मानते, खलाकी को नहीं मानते, फिर ये शिर्क करते हैं। वजअलना फिल अर्दी रवासिया अन तमीदा बिहिम, तीसरी दलील, और हमने जमीन में पहाड़ जमा दिए। रवासिया जो है ये रासियतुन वाहिद है और रवासिया जो है वो इसकी जमा है, और हमने जमीन में पहाड़ जो है वो बनाए। अब यहाँ पे जिबाल लफ्ज नहीं आया, क्योंकि जिबाल आम पहाड़ों को कहते हैं और रवासिया जो है उन पहाड़ों को कहा जाता है जो ज्यादा मजबूत होते हैं, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़, और जितने वो ऊपर होते हैं उससे 3 गुना ज्यादा जो है वो जमीन के अंदर होते हैं। और इसका रूट क्या है, रासीन वो, तो हमने जमीन पर मजबूत पहाड़ जो थे वो बनाए, अंतमीदा बहिम। फिर फरमाया कि कहीं वो इन्हें लेकर ढुलक ना जाए। और यहां पर अन जो है के तमीदा बहिम के झुक ना पड़े इनके साथ। और यहाँ पे तमीदा का लफ्ज जो है ये इस्तेमाल किया गया है, और मीम या दाल जो है वो इसका रूट है। और इसके माने क्या है कि कहीं जो जमीन है वो झुक ना जाए, हिले नहीं, क्योंकि जमीन पर अगर पहाड़ ना रखे जाते तो जमीन जो थी वो हिल जाती। तो ये जो है ये अल्लाह ताला की खालकियत की और तौहीद के दलाइल में तीसरी निशानी है कि पहाड़ मेखों की तरह जमीन पर गाड़ दिए। वल जिबाल औतादा, ये कुरान में हमें और जगह भी मिलता है कि पहाड़ों को जमीन पर जो है वो कील की तरह ठोक दिया। अब आप देखें कि आप किसी चीज पर कील ठोक देती हैं तो वो चीज जो है वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाती है। फिर इसके बाद चौथी दलील है कि वजालना फीहा फिजाजन सुबुलल लअल्लहुम यहतदून, और हमने इसमें जो है वो खुले रास्ते बनाए। फिजाजन, फा जीम जीम इसका रूट है, और दो पहाड़ों के दरमियान जो शगाफ होता है, जो सुराख होता है, उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो फज वाहिद है, फिजाज इसकी जमा है, तो दो पहाड़ों के दरमियान अल्लाह ताला ने जो है वो फिजाज यानी शगाफ पैदा किए। सबुलन सबील की जमा है, और खुले रास्ते को, कुशादा रास्ते को कहते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि इसने जमीन में जो है फिजाजन सबुलन बना दी। फिया की जमीर जमीन के लिए आई है कि जमीन में कुशादा राहें बनाई, लअल्लहुम यहतदून, शायद के लोग अपना रास्ता मालूम कर लें। तो जमीन में चलने के लिए लोग रास्ता पाएं और अल्लाह के इंतजाम को देखकर तौहीद परस्त बन जाएं। तो ये है कि सिराते मुस्तकीम को पालें, तौहीद को पालें। फिर इसके बाद आप देखिए कि पांचवी दलील दी जा रही है, वजअलना समा सक्फम महफूज, और हमने आसमान को एक महफूज छत बना दिया। सीन काफा जो है ये छत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और महफूजा हिफाजत वाली, और हमने आसमान को एक मजबूत छत बनाया। आसमान जो है ये जमीन के लिए छत है, और अल्लाह उसे जमीन पर गिरने से महफूज रखता है। ये सूरत काफ आयत 6 में आप पढ़ सकती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या इन्होंने आसमान को अपने ऊपर नहीं देखा कि हमने उन्हें किस तरह बनाया है और जीनत दी है, और इसमें कोई सुराख नहीं है। वमा लहा मिन फुरूज, तो इससे ये बात पता चलती है कि अल्लाह ताला जो है वो जो आसमान की जो आफतें हैं या उसके जो भी चीजें हैं उससे जमीन और जमीन वालों को जो है वो महफूज रखता है। तो आसमान को एक महफूज छत बनाया है। लहुम अन आयातिहा मोरेदून, मगर ये है कि इसकी निशानियों की तरफ से तवज्जो ही नहीं करते, एराज बरतते हैं, पहलू तही करते हैं। फिर इसके बाद आयत नंबर 33 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने छठी निशानी की तरफ तवज्जो दिलाई है, जिसमें चार चीजें हैं। वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्सा वल्क़मर कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, और वो अल्लाह ही है जिसने रात और दिन बनाए और सूरज और चांद को पैदा किया, सब एक एक फलक में तैर रहे हैं। अब आप देखें कि रात दिन सूरज और चांद, ये चार चीजों का जिक्र किया, यानी सिर्फ सूरज और चांद नहीं बल्कि कुल्लुन कह दिया ना, तमाम, जिसे तमाम गैलेक्सीज मुराद हैं। फी फलक, फा लाम काफ, ये जो है इसके मानी है, फलक के मानी है कि वो ऑर्बिट, वो मदार जिस पर गैलेक्सीज जो हैं, कहकशाएं जो हैं वो उसमें जो है वो तैरती हैं। तो पहली बात जो यहां पे सामने आ रही है वो ये है कि इन सब का पैदा करने वाला अल्लाह है। दूसरी बात कि रात और दिन भी अल्लाह ही ने बनाए और सूरज और चांद भी, और ये रात और दिन के अलावा जो सूरज चांद और तमाम जो गैलेक्सीज हैं ये ऐसे नहीं हैं कि ये चीजें जो हैं ये खूंटियों की तरह कहीं जुड़े हुए हैं या टंके हुए हैं, बल्कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कोई लिक्विड चीज है, या कोई ऐसा ऑर्बिट है या कोई ऐसी फिजा या खिला है जिसमें ये हरकत कर रहे हैं, जिसमें ये जो है वो चल रहे हैं। जैसे पुराने जमाने में लोग ये समझते थे कि जो है वो आसमान और जमीन के बारे में कि बस एक धमाका हुआ तो ये अलग हो गए, लेकिन जो है ये फिजिक्स, बायोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी जो है, जदीद मालूमात जब इन्हें मिली, साइंस ने तरक्की की, तो मौजूदा दौर का इंसान जो है वो क्या करता है कि आयत नंबर 30 से लेकर 33 तक अब वो अपनी मालूमात को इन कुरानी आयात के मुताबिक समझता है। वैसे तो कुरान जो है वो साइंस के प्रूफ का मोहताज नहीं है, क्योंकि कुरान ने तो इतने 100 साल पहले ये बातें कह दी और लोग जो हैं वो वक्त के साथ साथ तरक्की करते हुए जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि रात और दिन और सूरज को पैदा करने वाला अल्लाह है, फिर इनके लिए, सूरज और चांद के लिए, एक मखसूस जगह है जिसमें वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गर्दिश करते हैं, कोई एक दूसरे से टकराता नहीं है, वो अपनी महदूद जो लिमिट्स हैं, जो उनकी लिमिट्स तय हैं, उससे बाहर नहीं निकलते। अब आप देखें कि इंसान क्या है, कि इंसान जो है वो अपनी लिमिट से बाहर निकलता है तो फिरौन बन जाता है, सामरी बन जाता है, शैतान बन जाता है, नमरूद बन जाता है। अब आसमान जो है उस पर दिन के वक्त सूरज निकलता है, जब नहार है तो सूरज है, जब रात है तो चांद है। अब सूरज ये नहीं कहता दिन को, दिन के वक्त जब निकलता है, कि चांद को कहे कि जाओ जाओ रात के वक्त भी अब मैं तुम्हें निकलने नहीं दूंगा, मैं ही रात को जो है तुलू होऊंगा, और वो जो है वो चांद को जो है वो सताए या तंग करे, या दिन के वक्त जब दिन निकलता है तो दिन ये नहीं कहता कि रात को बुरा भला कहे कि तुम तो रात हो, अंधेरा है और अब मैं तुम्हें निकलने नहीं दूंगा, मेरे दिन ही रहेगा, बल्कि क्या है, दिन चला जाता है रात आ जाती है, और ये कुदरत का निजाम हजारों साल से जो है वो चल रहा है। इससे क्या बात पता चलती है कि कायनात के अंदर ये जो अल्लाह ताला की मखलूक है और ये जो अल्लाह ताला की पैदा करदा चीजें हैं, ये अल्लाह ताला की अता करदा लिमिट्स के अंदर घूमती हैं और उससे जरा बराबर वो जो है वो बाहर नहीं निकलती। अगर वो जरा सा इधर उधर हो जाए तो सैयारे, गैलेक्सीज आपस में टकरा जाएं और मौजूदा कायनात का निजाम जो है वो हिलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। अब देखें, गाड़ियां चलती हैं, यहाँ पे सड़कों पे जो लेन्स बनी हुई हैं, तीन तीन चार चार पांच पांच, गाड़ी जरा सी अपनी लेन से इधर हो तो एक्सीडेंट हो जाता है ना, जरा सा वहीं पे चलती चलती रुक जाए तो पीछे वाले से टकराती है, और एक नहीं, 14 14, 12 12, 15 15, 20 20 गाड़ियां आपस में टकराती हैं, कैसे तबाही मचती है, कितने लोग मरते हैं। और अगर ये जो सैयारे हैं, ये गैलेक्सीज हैं, ये अगर जो है वो अपने मखसूस दायरे से बाहर निकल आए या अल्लाह की नाफरमानी करें तो फिर क्या हो, लेकिन ये नहीं करते। अल्लाह ताला इनकी अताअत बता रहे हैं, कुल्लुन फी फलकी यसबहून, ये सब एक एक फलक में, एक एक ऑर्बिट में, एक एक जो इनका दायरा है ये उसके अंदर जो है ये तैर रहे हैं, ये उसमें चल रहे हैं, ये अल्लाह की अताअत कर रहे हैं। तो ये जो इंसान है, जो अशरफुल मखलूकात है, तो ये क्यों नहीं अल्लाह की अताअत करता, तो इन्हें क्या करना चाहिए कि अल्लाह की अताअत करनी चाहिए। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 34 से लेकर 43 तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का मजाक उड़ाने वालों को जवाब दिया गया है। ये बताया गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसान ही है, यानी वो क्या कहते थे कि इंसान क्यों है, कोई अमीर और मालदार क्यों नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, बस अल्लाह के नबी जो है वो एक इंसान ही है। वमा जअलना लिबशरा मिन क़ब्लिकल खुल्द, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमेशगी तो हमने तुमसे पहले किसी इंसान के लिए नहीं रखी। वमा जअलना, और नहीं बनाया हमने लिबशरिन, किसी बशर को, मिन कबली का, आपसे पहले, अल खुल्द, हमेशगी में, यानी हमने आपसे पहले किसी इंसान को भी हमेशा रहना नसीब नहीं किया। अफा इमिता फहमुल खालिदून, अगर तुम मर गए तो क्या ये लोग हमेशा जीते रहेंगे। अब अहले मक्का जो थे वो इस पर एतराज करते थे कि वो ये कहते थे और वो ये चाहते थे कि जो है वो एक दिन जो है वो रसूल अल्लाह तो फौत हो जाएंगे, यानी ये मर जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया है कि मौत तो हर इंसान को आनी है, और प्यारे रसूल भी इससे जो है वो मुस्तस्ना नहीं है, वो इंसान ही है, बशर है, और किसी भी इंसान के लिए अल्लाह ने ये तय नहीं किया कि वो हमेशा दुनिया में रहेगा। और फिर सवाल पूछा है कि अफ़ा मिता, अगर प्यारे रसूल फौत हो जाएंगे तो हुमुल खालिदून, तो क्या ये हमेशा जिंदा रहेंगे, तो क्या ये बात कहने वाले खुद मरेंगे नहीं। तो इससे क्या बात पता चलती है कि वो लोग जो हैं जो शिर्क करते हैं और ये समझते हैं कि उनके जो वली हैं या जो उनकी बातें जो हैं वो अल्लाह से मनवा सकते हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सबको मौत आनी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, वनब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजऊन, और हम अच्छे और बुरे हालात में डालकर तुम सबकी आजमाइश कर रहे हैं, आखिरकार तुम्हें हमारी ही तरफ जो है वो पलटना है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हर मखलूक को मौत का मजा चखना है, और दुनिया में जो लोगों पर अच्छे और बुरे दिन आते हैं तो क्या है, ये जो खुशी गमी अमीरी फकीरी सेहत बीमारी रोजी में कुशादगी और तंगी जो है, अल्लाह ताला दरअसल इसके जरिए आजमाता है, फितना फातानून आप पढ़ चुकी हैं कि सोने को भट्टी में तपाना पिघलाना ताकि उसका खोट अलग हो जाए, और ये फतन जो है ये इम्तहान का सबसे सख्त दर्जा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है अच्छे दिन लाते हैं किसी पर तो भी आजमाते हैं, बुरे दिन लाते हैं तो भी आजमाते हैं। तो जब अच्छे दिन होते हैं, किसी को सेहत मिली हुई है, दौलत मिली हुई है, उसको खुशियां मिली हुई हैं, अमारत मिली हुई है, कुशादगी है, खूब नवाजा हुआ है, तो ये बड़ा सख्त इम्तहान है, और ये इम्तहान है कि वो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनता है या नहीं। अगर वो गमों के अंदर है, फकीर है, बीमारियों में है और तंगी है उसके पास, बहुत ही सख्त दिन है, तो इस चीज की आजमाइश है कि ये सबर करता है कि नहीं। और फिर साथ ही कहा कि बंदा काफिर हो या शाकिर, बंदा या शुक्रा हो या शुक्रगुजार, जब मरेगा तो अल्लाह के सामने ही हाजिर होगा, और अल्लाह उसके अमाल की उसको जो है वो जजा या सजा जो है वो देने वाला है। वह इलैना तुरजऊन, वाइजा रआक अल्लज़ीन कफरू, और जब ये मुनकरीने हक आपको देखते हैं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रआ का रसूल अल्लाह की तरफ जो है इशारा है, जब आपको ये देखते हैं तो क्या करते हैं, इन यत्तखिज़ूनका इल्ला हुज़ुआ, तो तुम्हारा मजाक बना लेते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, क्या कहते हैं। अब यहाँ पर जो है वो लोग जो के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक करते थे, अब जो है वो बताया जा रहा है कि किस तरह से वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो थे वो ख्याल करते थे, और वो किस तरह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो दुख देते थे, कहते थे अहाज अल्लाजी, क्या ये है वो शख्स, यज़कुरु आलिहतकुम, जो तुम्हारे खुदाओं का जिक्र किया करता है। यानी मजाक उड़ाने वालों की बुनियाद और वजह बताई जा रही है, और फिक्रे तो वो कसते ही होंगे, और उसके साथ वो ये भी कहते थे कि क्या ये है वो शख्स जो तुम्हारे बुतों का मजाक उड़ाता है या तुम्हारे बुतों की तरदीद करता है कि ये बेजान तुम्हारे जो बुत हैं ये नफा नुकसान तुम्हें नहीं पहुंचा सकते, तो उस पर वो बहुत नाराज होते थे। तो आपस में क्या कहते थे, क्या ये है वो शख्स जो तुम्हारे खुदाओं का जिक्र किया करता है, वहुम बिजिक्र रहमान हम काफिरून, और इनका अपना हाल ये है कि रहमान के जिक्र से मुनकिर हैं। खुलिकल इंसान उमिन अजल, इंसान जल्दबाज मखलूक है, सऊरी कुम आयाती फला तस्ताजिलून, अभी मैं तुमको अपनी निशानियां दिखाई देता हूं, जल्दी ना मचाओ। अब आप देखिए कि यहां पर ये बात कही जा रही है कि खुद तो ये शिर्क करते हैं और रहमान के नाम के ये मुनकर हैं, कहा कि इंसान जो है ये जल्दबाजी से बनाया गया है या पैदा किया गया है। जैसे किसी के बारे में कहा जाए कि फलां शख्स जो है वो अक्ल का पुतला है, फलां शख्स हरफों का बना हुआ है, तो अरबी जबान में कहते हैं कि फलां शख्स जो है उसकी सरिश्त में जो है वो उजलत है, जल्दबाजी जो है उसके सरिश्त में पाई जाती है। जैसे आपने बनी इसराइल की आयत 11 में पढ़ा, वकान अल इंसानु अजूला, तो यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बात कही कि इंसान जो है ये जल्दबाज पैदा किया गया है। नदर बिन हारिस के बारे में आता है जो रसूल अल्लाह का बहुत बड़ा दुश्मन था और दीगर मुशरिकी ने मक्का के साथ वो भी अजाब आ जाने की जो है वो बात करता था, और मुशरिकी ने मक्का भी ये कहते थे रसूल अल्लाह को और मुसलमानों को कि अगर आप लोग सच्चे हैं तो फिर वो अजाब हम पर क्यों नहीं आ जाता जिसकी तुम हमें धमकी देते हो। तो यहाँ पे इंसान की इसी उजलत पसंदी की तरफ इशारा किया गया है कि इंसान क्या करता है, बड़ा जल्दबाज है, बहुत जल्दी जल्दी ऐसी बातें करने लगता है कि अगर वो पूरी कर दी जाए तो उसका उन्हें जो है वो नुकसान हो जाए। जैसे किसी को जो है बद्दुआएं देनी शुरू कर देना, या जो है वो तंगी मुसीबत आ जाए तो किसी का ये कहना कि मौत क्यों नहीं आ जाती, या कि इससे अच्छा है कि मैं मर गई होती, इससे अच्छा था एक्सीडेंट ही हो जाता, इससे अच्छा था फलां काम हो जाता। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान जो है फौरी तौर पर अपने रिएक्शन का जो है वो इजहार करता है, जैसे कि अहले मक्का जो थे वो किया करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं अनकरीब जो है सऊरीकुम, के अनकरीब जो है दिखाता हूं तुम्हें आयाती निशानियां अपनी, फला तस्ताजलून, पस तुम जल्दी ना करो। तो अभी मैं तुम्हें अपनी निशानियां जो है वो दिखाता हूं, जल्दी ना मचाओ। और ये कुलूना मता हाजल वादो इन कुंतुम सादिकीन, और ये कहते हैं कि आखिर ये धमकी कब पूरी होगी अगर तुम सच्चे हो, यानी हम पर अजाब कब आएगा या वो कयामत कब आएगी जिसके बारे में तुम हमें जो है वो धमकी देते हो। लौ यालमुल लजीन कफरु, काश इन काफरों को उस वक्त मालूम होता, हीन ला यकुफून अम वजूहुम नारु वला अन ज़ुहूरहिम वला हुम युनसरून। अब यहां पर जो है बड़ी ही हसरत के साथ और बड़ी ही इबरत के साथ जो है इन्हें इनके अंजाम से जो है वो डराया गया है, उसकी धमकी दी गई है। फरमाया काश ये काफिर उस वक्त का इल्म रखते। यहाँ पे जो हीना लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है, इसके मानी है उस घड़ी का, उस वक्त का। ला यकुफूना, काफा फा जो है ये रूट है इसका, हथेली को कहते हैं, जैसे हथेली से किसी चीज को हटाया जाता है। और इसी तरह पीछे भी आपने पढ़ा था कि उदखुलू फिस्सिल्म काफा, के इस्लाम में पूरे के पूरे जो है वो दाखिल हो जाओ, तो पूरे के लिए भी इस्तेमाल होता है। और कफ जो है ये काफा फा जो है वो हटाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, रोकने के लिए भी। ला या कुफूना, नहीं ये हटा सकेंगे, अन वजूहिम अपने चेहरों से, अन्नारा आग को, जबकि ये ना अपने मुंह से आग हटा सकेंगे, ये अपने चेहरों को आग से बचा सकेंगे, वला अन ज़ुहूरहिम और ना अपनी पीठों को बचा सकेंगे। आमतौर पे इंसान क्या करता है कि चेहरा उसके जिस्म का सबसे नाजुक हिस्सा है और वो अपने चेहरे को मार से बचाता है। अब आप देखें कि जब भी गर्मी की लू होती है या कहीं किसी की तरफ से कोई पिटाई या मार हो तो चेहरे को हटा के इंसान कंधे को आगे करता है, पीठ को आगे करता है, चेहरे को बचाता है। तो कहा पहले जिक्र चेहरे का किया कि ये अपने मुंह आग से बचा ना सकेंगे और ना ही अपनी पीठें, वला हुम युनसरून और ना ही इनको कहीं से मदद जो है वो पहुंच सकेगी। तो अहले कुफ्र और शिर्क करने वाले चूंकि वो कयामत का इनकार करते थे तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो तो आकर रहेगी, क्योंकि सूरत अलंबिया की जो पहली आयत है उसमें भी अल्लाह ताला ने बगैर किसी तमहीद के यही बात कही कि इक्तरब लिन्नासी हिसाबहुम वहुम फी गफलतिन मोरिदून। और अब यहाँ पे जो है इसका जिक्र किया जा रहा है कि जब वो वक्त आ जाएगा ना खुद अपने आप को बचा सकेंगे और ना ही कोई इनकी मदद कर सकेगा, बड़ा ही जो है वो हौलनाक मंजर होगा। अब तो ये अजाब के जल्दी आने के लिए शोर मचाते हैं ना, तो खुद भी नहीं बचा सकते, कोई इनकी मदद को भी नहीं पहुंच सकता। तो जहन्नुम की हैबतनाकियां जो हैं ये बड़ी ही शदीद है, ये बड़ी ही सख्त है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, फरमाया बलता तीहिम बख्ततन, बल्कि वो अचानक आ जाएगी। तबहतुहुम, जो इनको मबहूत कर देगी, फिर होश खो देगी इनके। तो ये जो फतबहतुहुम, इसका रूट है बाहाता, इसके मानी होते हैं यकदम हैरान कर देने वाली कोई चीज जिससे इंसान के हवास चले जाएं। जैसे आप देखेंगे अभी पिछले दिनों जो पाकिस्तान में सैलाब आया था, तो मबहूत कर देने वाला था ना, कि लोग जो थे वो अपने आप को बचा नहीं सके, वो मुनासिब सही जगहों पर पहुंच नहीं सकते। इससे पहले जो जलजला आया था कश्मीर में, तो आप देखें कि वो भी कैसा था ना। तो यहां पर भी ये बात बताई जा रही है कि जब अल्लाह का अजाब आएगा तो ऐसा अजाब होगा कि बिल्कुल अचानक, और कैसा अचानक कि ये संभल नहीं सकेंगे, ये जो है वो बिल्कुल मबहूत हो जाएंगे, हैरान, यकदक, हवास इनके खो जाएंगे। फला यस्ततीउना रद्दहा, और ये उस अजाब को, उस कयामत को अपने से रद्द भी नहीं कर सकते, दफा नहीं कर सकेंगे, हटा नहीं सकते। वला हुम युनज़रून, और ना इनको जो है वो लम्हा भर के लिए मोहलत मिल सकेगी। तो यहां पर इंसान की बेबसी जो है उसको जाहिर किया गया है कि लोगों, जो कुफर कर रहे हैं, जो शिर्क करने वाले हैं, वो इस बात को मत भूलें कि उन पर जो है वो बड़ा ही मुश्किल वक्त आने वाला है, और वो इतना मुश्किल वक्त है कि जब कयामत आएगी तो इतनी अचानक आएगी कि किसी को तौबा की मोहलत भी नहीं मिलेगी, किसी को अमल की मोहलत नहीं मिलेगी, कोई रूठों को मना नहीं सकता, कोई माफी नहीं मांग सकता, कोई कर्जे अदा नहीं कर सकता, कोई मुंह के अंदर अगर निवाला खा रहा होगा तो एक निवाला मुंह के अंदर ले जा रहा है और दूसरा हाथ में है, तो जो हाथ के अंदर है मुंह के अंदर नहीं ले जा सकेगा कि कयामत आ जाएगी। आयत नंबर 41 में फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि वला कद इस्तुहजिया बिरुसुल मिन कब्लिका, कि तुमसे पहले भी रसूलों का मजाक उड़ाया जा चुका है। हाजा हमजा इसका रूट है और इसका मतलब होता है मजाक उड़ाना। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आज आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो आपसे पहले जो रसूल मैंने भेजे थे, इनका भी उनकी कौमों ने मजाक उड़ाया था। तो जब कौमों ने मजाक उड़ाया तो हुआ क्या? फहाक बिल्लजीना सखिरु मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, तो उन मजाक जो उड़ाने वाले थे उनका क्या हाल हुआ कि फहाका, बस वो घिर गए, उनको घेर लिया। अल्लाजीना, उन लोगों को, सखेरू, जिन्होंने मजाक उड़ाया था। मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, वो उस चीज के फेर में आ गए जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। तो यहां पर ये बात बताई जा रही है कि मजाक उड़ाने वाले जो थे, फिर वो अल्लाह के अजाब में मुब्तिला हुए तो कोई उनकी मदद ना कर सका। तो वो भी जो शिर्क करते थे, उनके बुत और जो लोग थे, कोई उनकी मदद ना कर सके। तो यहाँ पे भी यही बात जो है वो बताई जा रही है। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 42 है, इसमें जो है वो कहा जा रहा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन शिर्क करने वालों, इन कुफर करने वालों और झुटलाने वालों से पूछो, कुल मैं यकलउकुम, इनसे पूछो कि कौन हिफाजत करता है तुम्हारी। यकलउकुम जो है ये वकील से है, आप याद रखिएगा। देखें इसका जो है वो रूट तो वही है जो कि वकील का है, वो काफ लाम, हिफाजत करना, निगरानी करना, और वैसे ये बड़ा ही मुश्किल लफ्ज लग रहा है। तो एक इसका रूट वो काफ लाम बताया जाता है, दूसरा इसका काफ हमजा लाम भी बताया जाता है, काफ हमजा लाम। तो असल में मानी क्या है कि कौन इनकी हिफाजत कर सकता है, बिल्लैली व नहारी, रात को या दिन को, मिनर रहमानी, रहमान से, कि अगर रात के वक्त अल्लाह का अजाब इन पर आ जाए या फिर दिन के वक्त अल्लाह का अजाब इन पर आ जाए तो कौन इनको बचाएगा। बल हुम अन ज़िक्रे रब्बिहिम मोरिदून, मगर ये लोग जो हैं अपने रब की नसीहत से मुंह मोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जिक्र से मुराद जो है वो कुरान मजीद है, कि ये लोग जो है वो कुरान मजीद से जो है वो एराज कर रहे हैं। अम लहुम आलिहतुन, क्या ये ऐसे खुदा रखते हैं, क्या इनके ऐसे माबूद हैं। तम ना हुम, जो इनको जो है बचाते हैं, मिन दूनिना, हमारे सिवा, यानी क्या इनके पास ऐसे माबूद हैं जो इनकी हमारे मुकाबले में मदद कर सके। ला यस्तती नसरा अनफुसहिम वला हुम मिन्ना युसहबून, वो ना तो खुद अपनी मदद कर सकते हैं और ना हमारी ही ताईद उनको हासिल है। ला यस्तती नसरा अनफुसहिम, तो अपनी मदद भी नहीं कर सकते जो इनके माबूद हैं, बड़े बेबस हैं। वला हुम मिन्ना युसहबून, और ना ही इन्हें हमारी सोहबत हासिल है और ना ही इन्हें हमारी जो है ना ही इन्हें हमारी ताईद हासिल है। तो ये जो आयत है, ये आयत नंबर 43 जो है, ये इनके बुतों की बेबसी को जाहिर करती है कि इनके बुत जो हैं ये बड़े ही बेबस हैं और इनकी बिल्कुल कोई मदद नहीं कर सकते। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 44 से लेकर 47 तक, 44 से 47 तक, मुतकब्बिरीन की गुरूर की असल वजह बताई गई है। और असल वजह क्या थी कि उनके जो अबाओ अजदाद थे या वो खुद थे, वो बड़े अमीर थे, तो मक्का के जो सरदार थे वो भी अमारत की वजह से मगरूर हो गए थे, शिर्क करने लगे थे। कहा कि असल बात ये है कि बल मताना, कि बल्कि हमने मताना साजो सामान दिया। मीम ता आइन जो है इसके मानी होते हैं साजो सामान या जो है वो फायदा उठाने की चीजें। बल मताना, बल्कि हमने जो है वो साजो सामान दिया हा उलाई इनको, व आबाहुम और इनके अबाओ अजदाद को, यानी इन लोगों को भी और इनके बाप दादा को हमने खूब जिंदगी का साजो सामान दिया। हत्ता ताला अलैहुमुल उम्र, यहाँ तक के इनको जो है दिन लगे, यहाँ तक के इनकी उम्रें जो थी वो दराज हो गई, यानी इनके कुफ्र और शिर्क की असल वजह ये है कि इनको और इनके बाप दादा को जब हमने जिंदगी का सरो सामान दिया, हत्ता ताला तो ए वोलाम तूल से है लंबा होना, यहाँ तक के इनकी तवील मुद्दत इन पर गुजरी, यानी तवील मुद्दत तक, लंबी जिंदगी तक इन्हें दुनिया की जिंदगी से फायदा उठाने का मौका दिया गया। और फिर इन्होंने क्या किया कि अपनी खुशहालियों और सरदारियों को लाजवाब समझ लिया, ऐसे मस्त हुए, भूल गए कि ऊपर कोई खुदा भी है जो इनकी किस्मतें बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अफला यरौना अन्ना नातिल अर्दा ननकुसुहा मिन अतराफिहा, मगर क्या इन्हें नजर नहीं आता कि हम जमीन को मुख्तलिफ समतों से घटाते चले आ रहे हैं। अफा हुमुल गालिबून, फिर क्या ये गालिब आ जाएंगे? तो अब यहां पर जो है ये बताया जा रहा है कि दिन ब दिन जो है कुफर के खिलाफ घेरा तंग होता जा रहा है, इस्लाम फैलता जा रहा है, और ये इस वहम में मत रहे कि ये गालिब आएंगे। अफाला यरौना, क्या ये देखते नहीं है, अन्ना नातिल अर्दा, कि हम जो है वो आ रहे हैं जमीन पर, नन कुसुआ इसको घटाते हुए, यानी कुफर घट रहा है इस्लाम फैल रहा है। और इसके मानी क्या है, इसके एक मानी ये है कि जमीन पर हर तरफ अल्लाह की गालिब ताकत के आसार नजर आते हैं, अचानक कहीं कहत है तो कहीं सैलाब है, कहीं जलजला है और कहीं जो है वो सर्दी गर्मी या किसी और शक्ल में ऐसी मुसीबत आ जाती है कि हजारों लाखों लोग मर जाते हैं, बस्तियां तबाह हो जाती हैं और वसाइले जिंदगी में भी कमी हो जाती है, और इंसान कितना जोर लगा ले उस नुकसान को पूरा नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जिनको मैं नवाजता हूं जब चाहता हूं, मैं उनको जो है उनकी जो अताएं हैं उनको रोक भी सकता हूं। तो यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं कि अल्लाह ने जो लोगों को नेमतें दे रखी हैं वो हमेशा रहने वाली नहीं है, और दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि इस्लाम का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है, इस्लाम जो है उसका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। अफा हुमुल गालिबून, क्या हम इन पर गालिब आ जाएंगे, मतलब क्या है कि फिर क्या ये गालिब आएंगे, यानी ये तो नहीं गालिब आएंगे, काफिर मुशरिक जो हैं इन पर इस्लाम गलबा हासिल करेगा। कुल इन्नमा उन्ज़िरुकुम बिल वही, इनसे कह दो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो कि मैं तो वही की बिना पर तुम्हें डरा रहा हूं, तुम्हें मुतनबे कर रहा हूं। वला यस्मउस्सुम्मुद्दुआ इज़ा मा युन्ज़रून, मगर बहरे पुकार को सुना नहीं करते जब उन्हें खबरदार किया जाए। यानी इनके पास कान तो हैं, उससे दुनिया की सारी चीजें सुनते हैं, लेकिन ये हक बात को नहीं सुनते। तो ये क्या है? ये बहरे हैं। वलाइम मस्सतुम नफ़हतुम मिन अज़ाब रब्बिका लयकूलुन्ना या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। और अगर तेरे रब का अज़ाब जरा सा इन्हें छू जाए तो अभी चीख उठें कि हाय हमारी कमबख्ती, बेशक हम खतावार थे। अब यहां पे जो है फरमाया जा रहा है कि अगर पहुंच जाए इनको, मीम सीन सीन मस करना छूना, अगर छू जाए इनको नफ़हतुन, नफ़हतुन जो है नून फा हा, इसके मानी है सर्दी में हवा का चलना, यानी सर्द हवा का झोंका या चलना, सर्द हवा का एक झोंका। तो दरअसल यहां पे ये लफ्ज जो है ये अजाब के लिए आया है कि अगर तेरे अजाब, रब के अजाब की एक लपट, एक झोंका जो है इनको छू जाए। अभी तो ये अजाब का मुतालबा करते हैं ना, और अगर अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो एक अजाब का झोंका जो है इनको छू जाए, लयकूलुन्ना, तो ये जरूर बजरूर कहेंगे या वैलना, हाय हमारी कमबख्ती, हाय हमारी बर्बादी, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, बेशक हम खताकार थे। फिर इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, फिर उस वक्त ये अफसोस करेंगे, लेकिन उस वक्त जो है वो देर हो चुकी होगी। तो नून फा हा जो है ये लफ्ज जो है ये सर्दी में हवा के चलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और सर्द हवा, क्योंकि सर्द हवा जो है ये भी अल्लाह का एक अजाब है, ये भी अल्लाह के अजाब की एक किस्म है। तो बताया जा रहा है कि अगर अल्लाह का हल्का सा अजाब, थोड़ा सा अजाब भी इन्हें पहुंच जाए तो फौरन पुकारेंगे और एतराफ करेंगे कि हम गुनाह करने वाले थे, हमने ज्यादतियां की थी। और अगर नून फा हा हो जाए तो सर्द हवा का झोंका है, अगर लाम फा हा हो जाए लफुन, तो गर्म हवा का झोंका होता है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। वदा उल मवाजीना, जो है वदा करना, रख देना, और हम रखेंगे अल मवाजीना तराजुए। मवाजीन जो है ये मिजान की जमा है, इसका रूट है वो जानून, और हम रखेंगे ठीक ठीक तोलने वाले तराजू। अलकिस्ता की सिफ्त इस्तेमाल की गई है, जो मवाजीन की किस्त जो है वो मवाजीन की सिफ्त है। तो हम किस्त के मानी क्या है कि हम इंसाफ करने वाले तराजू रखेंगे, ये यौमिल कयामती, कयामत के दिन। तो जब इंसाफ करने वाले तराजू होंगे, फला तुजलमु नफ्सुन शैया, तो उस वक्त किसी भी शख्स पर जर्रा बराबर जुल्म ना होगा। वा इनकाना मिसकाल हब्बतिन, और अगर जो है किया हो किसी ने मिसकाला, सा काफ लाम इसका रूट है बराबर, और अगर किसी ने किया हो बराबर, हब्बतिन एक दाने के, मिन खरदलिन राई के, और यही इसका रूट है, खारा दाल, राई के दाने को कहते हैं। तो अगर किसी ने राई के दाने के बराबर भी अमल किया होगा तो क्या करेंगे? अतैना बिहा, तो हम उसे जो है लाकर हाजिर कर देंगे। वकफा बिना हासिबीन, और हम हिसाब लेने वाले हैं। अब यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि कयामत के दिन इंसान जो जर्रा बराबर भी जो है वो अमल करेगा, तो खा के वो राई के दाने के बराबर हो। और यहाँ पे खास तौर पर जुल्म का जिक्र किया जा रहा है, किसी ने शिर्क किया, किसी ने अल्लाह का हक अदा नहीं किया, या अल्लाह के बंदों का हक अदा नहीं किया, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हम उसे जो है वो निकाल कर सबके सामने ले आएंगे। हम क्यों? वाकफा बिना हासिबीन, और हम ही हिसाब लगाने के लिए जो है वो काफी हैं। तो आप देख लीजिए कि यहां पर जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो पकड़ का और मीजान का जिक्र किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला जो है किस तरह से जो है वो तराजू रखेंगे कि हिसाब किताब फिर उसका हो और अदल के साथ हो। मुफस्सरीन कहते हैं ये जो तराजू रखे जाएंगे तो ऐसे ही होगा जैसे आज के मौजूदा दौर में अगर आप देखें, मिसाल के तौर पे मैं रख रही हूँ, जैसे आज देखें कि हवा जो है आंधी चलती है, तो वो भी जो है ये लोग मेजरमेंट करके बता देते हैं कि किस रफ्तार से हवा चली है। बर्फ पड़ती है, अब स्नो का सीजन है, तो ये बताते हैं कि कितने इंचेस जो है कितनी स्नो पड़ी है। तो मेजरमेंट करते हैं ना स्नो को, और हवा को भी करते हैं। अच्छा, पानी सैलाब आता है तो उसको भी, के समंदर में दरिया में जो है वो कितना पानी है, तो उसके लिए इनके पास डिफरेंट पैमाने हैं, है ना पैमाने। तो आज का इंसान जो है अगर अपनी इजादात के जरिए से चीजों का वजन कर सकता है, जैसे आप देखें कि ऐसे जो है वो अब ऐसी मशीनें बन गई हैं कि ये जैसे गन्ना है या फसलें हैं, जब वो आती हैं तैयार होकर ट्रक पर आती हैं, ट्रक समेत उनको जो है वो तोलते हैं वो लोग, तो पूरी की पूरी ट्रक समेत जो है वो तोली जाती हैं। इसी तरह आप देखें, आप अपने संदूक अटैची लेकर जाती हैं तो सारे तुलते हैं ना, किस तरह से डिफरेंट किस्म की जो है वो मशीनें हैं। आप जो है वो घी तोलती हैं तो डिफरेंट है, दूध दूध को मापती हैं तो डिफरेंट है। तो अल्लाह ताला जो कि अल्लाह कुल्ले शैइन कदीर, तो उसके लिए लोगों के अमाल को तोलना कोई मुश्किल बात नहीं है कि नेक अमल करने वालों के अमाल को भी तोले और बद अमल करने वालों के अमाल को भी तोले। जैसे हमें हदीस में मिलता है कि साहिबे कुरान के लिए कुरान एक खुश शक्ल नौजवान की शक्ल में आएगा, वो पूछेगा तू कौन है, वो कहेगा मैं कुरान हूँ जिसे तू रातों को कयामुल लैल में बेदार रहकर और दिन को प्यासा रहकर पढ़ा करता था। तो ये मुसनद अहमद की रवायत है। इसी तरह मोमिन की कब्र में अमले स्वाले एक खुश रंग और मुअत्तर नौजवान की शक्ल में आएगा, और काफिर और मुनाफिक के पास इसके एक बरअस बरअक्स शक्ल में आएगा। अच्छा, जैसे आप नमाज पढ़ने वाले हैं, मिसाल है कि एक शख्स पूरे खुशू के साथ वक्त पर जमात के साथ नमाज अदा करता है, तकबीर उला के साथ करता है। अब दूसरा भी जमात में शामिल होता है लेकिन बोझल दिल के साथ, अल्लाह को याद भी नहीं करता और ही ख्यालात में डूबा रहता है। तो अब आप बताएं कि दोनों की नमाज में फर्क है ना, जाहिरी शक्ल एक जैसी है लेकिन दोनों की नमाजों में नुमाया फर्क है, और ये किसको पता है? अल्लाह को पता है कि फलां शख्स की नमाज जो है उसकी क्या हकीकत है और फलां की जो है वो क्या हकीकत है। तो वल वजनु यौमैज़िनिल हक, तो उस दिन जो वजन जो है वो हक का होगा। बाज लोग बड़े बड़े अमल लेकर आएंगे पहाड़ों के बराबर वजन के एतबार से, लेकिन उनकी हकीकत जो है वो एक तिनके के बराबर भी नहीं होगी, क्योंकि उनके अंदर इखलास नहीं होगा, उनके अंदर जो है वो शिर्क पाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये बताया जा रहा है कि कयामत के दिन जो है लोगों के अमाल जो है वो तोले जाएंगे, अल्लाह ताला अदल व इंसाफ करेगा, और खास तौर पर उन लोगों के अमाल जो कि क्या करते थे कि दुनिया में जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते थे या फिर वो अच्छे अमल करते थे, तो जब वो तोले जाएंगे तो किसी पर जर्रा बराबर जो है वो जुल्म नहीं होगा। वकफा बिना हासिबीन, और हिसाब लेने के लिए अल्लाह ही काफी हैं। तो अल्लाह की जो मिजाने अदल है ये बड़ी जो है वो बेमिसाल है, बिल्कुल बेकमो कास जो है वो बता देगी, बड़ी सेंसिटिव जो है वो है और अदल करने वाली है। अब आप देखिए कि आयत नंबर 48 से लेकर 70 तक, अब यहां पर जो है ये यहां से 10 अंबिया कराम के वाकयात की इब्तदा हो रही है, और इनमें हजरत मूसा अलैहि इस्लाम, हारून अलैहि इस्लाम, इब्राहिम अलैहि इस्लाम, लूत अलैहि इस्लाम, इसहाक अलैहि इस्लाम, याकूब अलैहि इस्लाम, नूह अलैहि इस्लाम, और पीछे आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी पढ़ा। तो यहाँ पे जो है वो मूसा अलैहि इस्लाम का जिक्र और हारून अलैहि इस्लाम का बड़ा ही मुख्तसर है कि वलकद आतैना मूसा वह हारूना, और तहकीक हमने दी मूसा को और हारून को, अल फुरकाना फुरकान, और फुरकान जो है इसके मानी होते हैं हक और बातिल में फर्क करने वाली, और यहां पर जो है तौरात की सिफात बताई जा रही हैं। तो अल्लाह ताला ने जो है वो मूसा और हारून को फुरकान दी जो जहालत की तारीकियों में मिशल का काम करती थी, बनी इसराइल के लोग जो थे वो तौरात की तालीमात से नसीहत हासिल करते थे। तो पहली सिफत क्या है? अल फुरकान, हक और बातिल का फर्क बताने वाली। दूसरी सिफत है वदियान, और इसका मतलब क्या है? रोशनी, के वो जो थी तौरात जो थी वो रोशनी देने वाली थी। तो रोशनी किस चीज की? तौहीद की रोशनी, हदायत की रोशनी, अंधेरों को मिटाने वाली, कुफर और जहालत के अंधेरों को। वह जिक्रन, जिक्र जो है ये नसीहत को कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो है उसमें हक और बातिल का फर्क, हदायत की रोशनी और नसीहत रखी थी, लेकिन किन लोगों के लिए? लिल मुत्तकीन। ये वही बात है जो आपने अल बकरा में पढ़ी थी कि जालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। तो इसमें मुत्तकीन के लिए जो है वो क्या थी? फुरकान, रोशनी और नसीहत थी। तो उन्हीं वही लोग फायदा उठा सकते थे जो अल्लाह से डरने वाले थे। और मुत्तकी कौन होते हैं? अल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलगैबी, जो बेदेखे अपने रब से डरे। वहुम मिनस्साआति मुशफिकून, और जिनको हिसाब की उस घड़ी का खटका लगा हुआ हो। तो अब यहां पर जो है मुत्तकीन की मजीद सिफत जो है वो बताई जा रही है कि जो गैब गैब पर ईमान लाते हैं, क्योंकि अल्लाह तो गैब है, पोशीदा है, नजर तो नहीं आता ना, और जो है वो बेदेखे रब पर ईमान लाते हैं, वो अपने बेदेखे रब से जो है वो डरते हैं। और जिनको हिसाब की उस घड़ी का खटका लगा हुआ है, वहुम मिनस्साआति मुशफिकून, हाजा जिक्रु मुबारकुन अनजलनाहू, और अब ये बाबरकत जिक्र हमने तुम्हारे लिए नाजिल किया है। यहाँ पे इससे मुराद कुरान मजीद है। मुबारकुन बारा काफ बरा का, और ऊंट जो है वो सामान से लदा हुआ हो तो उसके लिए अरबों के यहाँ बरा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और इसके मानी क्या है कि बड़ा ही बरकतों वाला, बड़ा ही मुबारक जिक्र है। अनजलनाहू, इसको हमने नाजिल किया है, तो इसको नाजिल करने वाले, उतारने वाले कोई आम नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं कि इसको नाजिल करने वाले जो है वो हम हैं। तो जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हारून अलैहिस्सलाम को तौरात अता की थी, इसी तरह ये मुबारक किताब जो है वो नाजिल की है। अफा अंतुम लहू मुनकिरून, फिर क्या तुम इसको कबूल करने से इनकार करते हो? अब यहां पर मैं आपके सामने जो है ये बताती हूँ आपको कि तकवा किसे कहते हैं और अल्लाह का डर किसे कहते हैं, और आने वाली घड़ी जो कयामत की घड़ी है इसका खटका किसे कहते हैं, यानी हिसाब की घड़ी का खटका। कि अल्लाह अगर पूछेगा कि तुमने हराम क्यों खाया था, तुमने मेरी नाफरमानी क्यों की थी, तो फिर उस वक्त क्या जवाब देंगे ना। और इस सिलसिले में मैं आपके सामने इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया पेश करना चाहती हूँ। बड़ा ही खूबसूरत वाकया है। आपको पता है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे, और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह हर नमाज के बाद इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआ मांगा करते थे। ए अल्लाह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र में बरकत अता कर। जब आप हर नमाज के बाद ये दुआ मांगा करते, क्यों? क्योंकि वो खुद ये कहते थे कि इमाम शाफी मेरे उस्ताद हैं और मैंने उनसे जो है वो इल्म हासिल किया है। और वो कहते थे कि मैंने कोई नमाज ऐसी नहीं पढ़ी कि इल्म उनसे इल्म हासिल करने के बाद मैंने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के लिए ये दुआ ना की हो कि अल्लाह इमाम शाफी की उम्र में बरकत अता कर। अब आप देखें कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह भी जो है ये एक फिका के जो है वो इमाम है ना, मकतबे फिक्र रखने वाले हैं, लेकिन ये अपने उस्ताद के लिए दुआ करते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की बेटी थी छोटी, और वो बाप का ये अमल देखती थी। उसके लिए बड़ी हैरत की बात थी कि मेरे वालिद जो कि गैर मामूली तौर पर इबादत करते हैं और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं, मेरे वालिद का पूरा दिन जो है वो हदीस के इल्म को पढ़ाने में और रवाज देने में, तरवीज में गुजरता है। रातें मेरा वाले जो है वो अल्लाह के हुजूर गिरियाजारी में गुजारता है। उस बेटी ने अपने बाप को ये दो काम के अलावा कुछ करते नहीं देखा था। ये देखा था कि मेरे बाप को इन्हीं दो कामों से खास दिलचस्पी है, कि दिन जो है वो इल्म के सीखने से खाने में, और रात जो है वो अल्लाह की इबादत में वो गुजारते हैं। फिर वो कह सोचती थी कि आखिर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह किस दर्जे के इबादत गुजार इंसान होंगे कि इनके वालिद हर नमाज के बाद इनके लिए जो है वो दुआ करते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह काहिरा में यानी मिस्र में रहते थे, और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बगदाद में। बगदाद से काहिरा का फासला सैकड़ों मील का है। अब लड़की जो है वो इमाम शाफी को देख नहीं सकती थी। आखिर एक दिन इमाम अहमद बिन हम्बल को इमाम शाफी का पैगाम आया कि मैं बगदाद आना चाहता हूँ। बगदाद में एक मुहद्दिस थे और उनके पास एक हदीस थी, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वो हदीस उस इमाम से बगदाद आकर बराह रास्त उसकी समाअत करना चाहते थे, उसको सुनना चाहते थे। और उस बुजुर्ग की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को इस बात का खतरा था कि कहीं वो फौत ना हो जाए। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी लिखा था कि वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के घर में ठहरेंगे। 1 माह से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद का इंतजार कर रहे थे, और इनकी बेटी भी बड़े शौक से इंतजार कर रही थी। वो ये देखना चाहती थी कि आखिर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह में ऐसी कौन सी खसूसियात हैं कि इनके वालिद हर नमाज में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की दराजी उम्र की दुआ मांगते हैं। तब एक तवील सफर तय करके बिलाखिर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो बगदाद पहुंचे और अहमद बिन हम्बल के घर में ठहरे। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने बेटी को खसूसी हदायात दी कि देखो ये खास मेहमान है, इसका खास ख्याल रखना, इन्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और बेटी तो देखना ही चाहती थी कि आखिर जो है वो इमाम शाफी किस दर्जे के इबादत गुजार और अल्लाह वाले हैं। शाम हुई, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह दस्तरखान पर पहुंचे तो बच्ची ने इस बात का ध्यान रखा कि वो कितना खाना खाते हैं, इसलिए कि उसने देखा था कि इसके वालिद तो हमेशा थोड़ा खाना खाते हैं। इसने ये भी सुना था कि अल्लाह वाले बहुत थोड़ा खाते हैं, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गई कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने खूब डटकर खाना खाया। नमाज इशा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद में अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के साथ पढ़ी। वापिस आकर आराम की गरज से वो बिस्तर पर लेट गए। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की बेटी वक्फे वक्फे से अपने वालिद के कमरे का जायजा लेती रही कि इसके वालिद तो मसल्ले पर खड़े रब के हुजूर मनाजात गिरियाजारी नवाफिल में मसरूफ हैं, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बिस्तर पर लेट गए हैं। उसे ख्याल हुआ कि शायद आज सफर की थकन की वजह से सोए हैं, तहज्जुद में उठेंगे। सोचने लगी तहज्जुद में उठेंगे, लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद में भी नहीं उठे। फजर की अजान हुई लेकिन वो बेदार ही नहीं हुए। जब इसके वालिद नमाज फजर के लिए मस्जिद जाने लगे तो उन्होंने आवाज दी, शेख जमात तैयार है, तशरीफ ले चलिए। अल्लाह अकबर ये कहते हुए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने चादर उतार फेंकी और बगैर वुजू किए अहमद बिन हम्बल के साथ मस्जिद की तरफ चल दिए। उनके लिए जो वुजू का पानी रखा गया था वो जूं का तू पड़ा रहा। अब अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की बेटी हैरानी से ये सब कुछ देख रही थी और सोच रही थी कि मालूम नहीं क्या मामला है, मेरे वालिद के ये कैसे उस्ताद हैं कि रात को खाना भी खूब खाया, सारी रात सोए रहे, सुबह बगैर वुजू के मस्जिद चले गए, अमाल और अशगाल तो बस आम आदमियों की सतह से बुलंद नजर नहीं आते। पता नहीं मेरे वालिद आखिर इनके किस अमल की वजह से इनके इतने गर्विदा हैं, हर वक्त इनके लिए जो है वो दराजी उमर की दुआ करते रहते हैं। नमाज फजर के बाद अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में बैठे जिक्र अस्कार में मसरूफ रहे सूरज निकलने के बाद अशराक के नवाफिल पढ़कर घर लौटे, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह नमाज फजर की अदायगी के बाद ही घर वापस आ गए और बिस्तर पर दराज हो गए। जब उन्हें नाश्ते पर बुलाया गया तो वो नाश्ते के लिए आकर बैठ गए। अब अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की बेटी सोच रही थी कि अगर वाकई ये बुजुर्ग हैं तो इनके अंदर ये बातें क्यों हैं, और अगर इनके अंदर ये बातें हैं तो फिर ये बुजुर्ग किस तरह हैं। अब जब वो नाश्ते पर बैठे तो अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल पूछा इमाम शाफी से कि शेख रेत रात कैसी गुजरी। उन्होंने कहा पूछा कि क्या ठीक तरह नींद आई, और साथ ही उन्होंने निवाला भी तोड़ा। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, रात तो अल्लाह ताला के फजल व करम से आराम से गुजरी, लेकिन अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की सवालिया नजरें इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर जो है वो टिक गई। कहने लगे, लेकिन मैं सोया एक लम्हा के लिए भी नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने जब ये कहा तो अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हुए और फिक्रमंद के आखिर क्या वजह हुई। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, रात जब आपने इशा की नमाज पढ़ाई तो आपने सूरत बकरा की जब ये आयत तिलावत की कि वइन कान ज़ू उसरतिन फनज़रतुन इला मैसरा, कि अगर मकरूज आदमी तंग हाल हो तो उसे इसकी खुशहाली तक जो है वो मोहलत दे दो, तो ये आयत सुनकर मेरे जहन में ये बात आई कि इस आयत से तो इस्लाम का कानून अफलास अखज होता है। फिर मैंने मजीद गौर किया तो मेरे जहन में यह ख्याल आया कि कानून अफलास यानी कानून अफलास से मुराद गुर्बत का कानून, इसकी बुनियाद इखलाकी उसूल पर है। फिर मुझे ख्याल आया कि इससे तो ये हुक्म भी निकलता है, फिर ख्याल आया कि ये कानूनी शिक भी निकलती है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत से अखज होने वाले सैकड़ों मसाइल बताने शुरू किए और वो बयान करते चले गए और अहमद बिन हम्बल सुनते चले गए। कहते हैं कि जब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ उस आयत पर सोचता रहा और मैं 108वें मसले पर पहुंचा, 108 उस मसले पर पहुंचा, तो तुमने मुझे नमाज फजर के लिए आवाज दे दी। अब अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की बेटी बिल्कुल खामोश ये सुन रही थी। उसे अब मालूम हुआ कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की एक रात इसके वालिद की हजारों रातों रातों पर भारी है, इसलिए कि इसके वालिद की इबादत का ताल्लुक इनकी अपनी जात से है, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशें पूरी उम्मत की रहनुमाई और भलाई के लिए हैं। लेकिन अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की बेटी के जहन में एक सवाल अब भी सर उठाए खड़ा था कि आखिर ये इतना ज्यादा खाते क्यों हैं। अभी वो सोच ही रही थी कि इसके वालिद ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, आपका सफर कैसा रहा? कहने लगे, सफर में थोड़ी सी परेशानी रही। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी उंगलियां चाटते हुए कहना शुरू किया, इसलिए कि जब मैं काहिरा से रवाना हुआ मिस्र से तो मेरे पास दिरहम और दिनार की जो थैली थी वो रास्ते में गुम हो गई और मेरे सामने दो ही सूरतें थी, एक ये कि काहिरा वापस चला जाऊं और दोबारा ज्यादा राह का इंतजाम करके आऊं, इस सूरत में काफिला छूट जाता और वो जो मुहद्दिस की खिदमत में पहुंचना चाहता था, मुझे ये डर था कि वो बहुत बूढ़े हैं और नामालूम कब जो है वो फौत हो जाएं, तो मुझे ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनसे वो हदीस सुनने से महरूम रह जाऊं। दूसरी सूरत यह थी कि अल्लाह का नाम लेकर रवाना हो जाऊं, जो होगा देखा जाएगा। मैंने दूसरी सूरत पर अमल करने को तरजीह दी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरे काफिले के साथियों ने मेरी बहुत इज्जत और खिदमत की, लेकिन मुझे उनकी आमदनी के जायज होने पर शरा सदर हासिल ना था। इस सूरत में शरीयत का हुक्म यह है कि जब इंसान की जान पर बन जाए तो मशकूक आमदनी में से सिर्फ बकदरे जरूरत खाया जा सकता है, इसलिए मैंने तीसरे चौथे दिन इनसे बकदरे जरूरत खाना कबूल किया और पूरे सफर में एक मर्तबा भी पेट भरकर खाना ना खा सका। आज पहली मर्तबा आपके दस्तरखान पर मुझे हलाल और जायज आमदनी का खाना मिला है। मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि रिज़्क़ के हलाल में एक खास नूर होता है जिसका अंदाजा दस्तरखान पर बैठते ही हो जाता है। आज तुम्हारे दस्तरखान पर मुझे जितना नूर नजर आया इतना किसी दूसरे दस्तरखान पर कभी नजर नहीं आया, इसलिए मैंने आज इस नूर से पूरा पूरा इस्तफादा किया। ये सुनकर बच्ची के दिल में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की कद्रो मंजिलत और ज्यादा बढ़ गई। ये थे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, जो कौन थे, मुत्तकीन में से थे, जो अल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलगैबी वहुम मिनस्साती मुशफिकून, जो अल्लाह से डरने वाले थे और जो हिसाब की घड़ी से डरने वाले थे। अब आप देख लें, एक हदीस के लिए तवील सफर और जो है वो भूखे हैं, तकरीबन महीने का सफर था और पेट भरकर खाना नहीं खाया, और पूरी रात जो है वो एक आयत से मसाइल के अखज करने में गुजार दी। और देखें कि शागिर्द का उस्ताद की इज्जत करना, और दूसरी तरफ जो है ये भी देखें कि जो है वो हलाल और हराम की तमीज उनको कितनी थी। वो कितनी अल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे। तो मेरा और आपका कुरान से कैसा ताल्लुक है, और मेरे और आपके उस्ताद जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो हमारे रहनुमा हैं, जो हमारे लीडर हैं, हम उनकी कितनी इज्जत करते हैं, हम कुरान और हदीस के मुताले के लिए कितनी कोशिश करते हैं, हम आने वाली जिंदगी आखिरत की जिंदगी के लिए कितनी तैयारी करते हैं। हाजा जिक्रु मुबारकुन अनजलनाहू, ये है मुबारक जिक्र जो हमने तुम्हारे लिए नाजिल किया है, मेरे लिए, आपके लिए। अफा अंतुम लहू मुनकिरून, फिर क्या तुम इसको कबूल करने से इनकार करते हो। अब यहां से आयत नंबर 51 से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक्या जो है ये शुरू होता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अब आप देख लीजिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो मुत्तकियों के इमाम थे, जिन्होंने अकेले वो काम किया जो एक उम्मत करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं इब्राहिम की दुआ हूं, और अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्लों में पैगंबरी लिख दी। तो अब यहाँ पे हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र तो सरसरी है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है वो कदरे तफसीली है, क्योंकि वो रुश्दो हदायत में उनको एक खास मर्तबा और मकाम हासिल था। वलकद आतेना इब्राहिम रुश्दहु, उससे पहले भी हमने इब्राहिम को रुश्द दिया था, रुश्दहु मिन कबलु, तो उससे पहले भी हमने इब्राहिम को उसकी होशमंदी अता की थी। वकुन्ना बिही आलिमीन, और हम उसको खूब जानते थे। अब यहां पर जो है रुश्द जो है ये हदायत का दूसरा दर्जा है, उसकी दूसरी स्टेज है। हदायत का क्या मतलब होता है कि सीधे रास्ता जो है उस पर चलना, और रुश्द होता है कि जो सीधा रास्ता पता चल गया है फिर उस पर चलते जाना, यानी हदायत की मार्फत हासिल करके फिर उस पर जो है वो बढ़ते चले जाना। तो अल्लाह ताला ने उनको हदायत की मार्फत अता की थी, खास उनको दर्जा अता किया था। वलकद आतेना इब्राहिमा रुश्दहू, और आपको याद है असाबे कहफ ने क्या दुआ मांगी थी, रब्बना हबलना मिन लदुनका रहमा व हय्यिलना मिन अम्रिना, और हम पर जो है वो अता कर दे क्या कि अपने पास से हमारे लिए जो है वो रुश्द जो है उसको नाजिल कर दे। तो असाबे कहफ ने भी अपने ईमान को बचाने के लिए एक गार में पना ली, और उसके साथ जो है वो अल्लाह ताला से उन्होंने रुश्द की दुआ की थी, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रुश्द अता किया था, वकुन्ना बिही आलिमीन, और फरमाया और हम उसको खूब जानते थे। तो इसके मानी है कि रुश्द ऐसे ही नहीं अता किया था, ये रुतबाए बुलंद, ये मर्तबाए बुलंद, ये खास मर्तबा ऐसे नहीं दे दिया था, बल्कि निहायत कड़े इम्तहानों में डालकर अच्छी तरह परख कर उसको ये रुतबा दिया था। क्या है, वकुन्ना बिही आलिमीन, हम उसको खूब जानते थे। इसके माने क्या है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबुवत से पहले ही होशमंदी अता कर दी, और हम जानते थे कि वो इस रुश्द का अहल है, उसके कमाल, उसका इल्म, उसका अमल, और उसका मुत्तकियों का जो इमाम बनना है उसको हम जानते थे। तो अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वाकिफ थे, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको इतना बुलंद दर्जा जो है वो अता किया। आपको याद है ना कि बचपन ही में उन्होंने सूरज चांद और सितारों पर गौर व फिक्र किया, और फिर उन्होंने कहा कि ये डूबने वाले मेरे रब नहीं हो सकते, और वो तौहीद परस्त बने, और फिर जो है वो मुत्तकियों के इमाम बने। उन्होंने अपने बाप, अपने खानदान, अपने कबीले वाले इर्द गिर्द के लोगों को तौहीद की दावत दी। तो वकुन्ना बिही आलमीन, और हम उसको खूब जानते थे। इस क़ाल अले अभी ही व कौम ही, याद करो वो मौका जबकि उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा था, मा हाजिह तमसीलू, ये कैसी मूर्तियां हैं, मैं जब भी ये वाक्या पढ़ती हूँ ना, मैं बहुत छोटी होती थी जब मैंने ये अरबी की कहानियां जो है मैंने तर्जुमे से पढ़ी थी, तो कसस उन अम्बिया, कसस उन नबीयीन, बड़ा मेरे दिल पर ये असर करता है, क्योंकि बचपन की चीज जो है ना, जो पढ़ी हुई होती है, अजीब किस्म का इंसान के अंदर जो है वो एक शऊर और फिक्र और इस्तकामत और विजदान जो है वो पैदा करती है। तो याद करो वो मौका जब उन्होंने अपने वालिद और अपनी कौम से कहा, मा हाजिह तमसीलू, ये कैसी मूर्तियां हैं। तमसील जो है इसका रूट है मीम सालाम, तिमसाल की जमा है। ये असल में किसी चीज की हूबहू नकल को कहते हैं, जैसे पत्थर का मुजस्मा या कागज और दीवार पर किसी की तस्वीर, या मुराद वो मूर्तियां हैं जो कौम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने माबूदों की बना रखी थी और जिनकी वो इबादत करते थे। मा हाजिह तमसीलू, ये कैसी मूर्तियां हैं, अल्लाती अंतुम लहा आकिफून, जिनके तुम लोग गिरविदा हो रहे हो, जिनके ऊपर तुम मोतकिफ हो। ऐन का फा जो है इसके मानी है किसी चीज को लाजिम पकड़ना, उस पर झुक कर जम कर बैठ जाना, इसी से एतकाफ लफ्ज है। एतकाफ में लोग क्या करते हैं, मुसलमान अल्लाह की इबादत के लिए जम कर बैठते हैं, हर एक से कट कर हट कर यकसुई और इन्हमाक और तवज्जो के साथ अल्लाह की तरफ लौ लगाते हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, ये अपने बुतों की ताजीम इबादत के लिए जो है वो इतकाफ कर रहे थे, उनके गिरविदा हुए थे। तो ये कैसी मूर्तियां हैं जिनके तुम लोग गिरविदा हो रहे हो। कालू, उन्होंने जवाब दिया, वजदना आबा अना लहा आबिदीन, हमने अपने बाप दादा को इनकी इबादत करते हुए पाया है। देखें कैसा उनका जवाब था, जो कि जो है वो खबर देता है कि उनके जवाब में जो है वो कोई भी वजन नहीं था, सवाय इसके कि हमारे बाप दादा ने ऐसा ही किया। काला लकद कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फी दलाल मुबीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तहकीक तुम भी व आबाउकुम और तुम्हारे बाप दादा भी फी दलाल मुबीन, खुले गुमराही में है। कालू, वो उन्होंने जवाब दिया, अजेतना बिल हकी अम अंता मिनल लाइबीन, कि क्या तू हमारे सामने अपने असली ख्यालात पेश कर रहा है। अजेतना, क्या तुम लाए हो हमारे पास बिलहक की सच्ची बात। हम अंता मिनल लाएबीन, या आप मजाक कर रहे हो। तो अब जो है उनकी कौम के लोगों ने कहा कि क्या आप संजीदगी से ये बात कह रहे हैं कि हम भी और हमारे बाप दादा गुमराही में थे, या महज हमसे मजाक कर रहे हो। तो लाएब वाहिद है, लाएबीन जमा है, लाम ऐन बा लाएबा खेलने के लिए आता है। قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अब तौहीद की दावत दी, जवाब दिया, बल रब्बुकुम, बल्कि तुम्हारा रब कौन है, रब्बुस समावाती, आसमानों का रब, वल अर्दी और जमीन का, वो जो के जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। रब जो है उनको परवरदा करने वाला, उनका परवरदिगार, उनका मालिक, अल्लाह जी फतरहुन, फा त्वारा रूट है इसका, और इसके मानी है किसी चीज को तराश खराश कर खूबसूरत बनाना। तो जिसने आसमान और जमीन को, उनका खालिक ही नहीं बल्कि वो उनका जो है वो फातिर भी है, उसने आसमान और जमीन को तराश खराश कर खूबसूरत बनाया है। वह आना अला ज़ालिकुम मिन शाहिदीन, और मैं इस पर जो है तुम्हारे सामने गवाही देता हूँ। शाहिद वाहिद है, शाहिदीन इसकी जमा है, तो मैं इस पर गवाही देने वालों में से हूँ। व तअल्लाही, और अल्लाह की कसम, ता जो है ये कसम के लिए आया है, वो भी आता है, बा भी आता है, और यहाँ पे ता है। व तअल्लाही, और अल्लाह की कसम, ला अकीदन्ना, कि मैं जरूर जो है वो चाल चलूंगा, असनामकुम, तुम्हारे बुतों पर। काफ या दाल ऐसी चाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जिसका दूसरे को पता भी ना चले, यानी ऐसा कदम उठाना जो किसी मुखालिफ के खिलाफ हो और उसको खबर भी ना हो। कहा कि खुदा की कसम, मैं जरूर तुम्हारे जो असनाम हैं उनकी खबर लूंगा, बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन, वादा अन तुवल्लु, बाद इसके कि जब तुम जो है चले जाओगे मुदबिरीन, पीठ फेर कर। तो वो लाम या जो है वो इसका रूट है और इसके मानी है कि पीठ फेरना, मुड़ जाना। और मुदबरीम दाल बारा से है, दुबर को कहते हैं, और पीठ के लिए ये भी लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो जब तुम यहां से चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों की अच्छी तरह खबर लूंगा। फजअलहुम जुजाजन, फिर इसने इनके बुतों को क्या किया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। जीम जाल जाल, इसका मतलब होता है काटना, और जमा बोला जाता है, इसका वाहिद नहीं होता। तो कहा कि मैं, फिर उन्होंने क्या किया कि इनके बुतों को रेजा रेजा कर दिया, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो किसी चीज को तोड़ना और रेजा रेजा कर देना। इल्ला कबीरन, मगर बड़े को। तो कबीर जो है या तो ताजीम और तकरीब के लिए आया है या जो उनमें सबसे बड़ा था। इल्ला कबीर अल्लाहुम, मगर जो इनका बड़ा था उसको छोड़ दिया। ला अल्लाहुम इलही यरजेऊन, ताकि शायद वो इसकी तरफ रुजू करें। सबको तो, सबका तो कुछ उम्र निकाल दिया, बड़े को जो है वो छोड़ दिया। और यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि बड़े को जो है वो क्यों छोड़ा, शायद कि वो लोग जो हैं वो इसकी तरफ जो है वो रुजू करें, शायद कि वो लोग जो हैं वो इसकी तरफ जो है वो लौटे। इसके क्या मानी है कि अब असल में यहां पर जो है ये एक दलील है, और दलील का मतलब क्या है कि जिस दिन ईद या जश्न का मौका था, सारी कौम जब बाहर चली गई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मौका गनीमत जानकर बुतों को तोड़ दिया, सिर्फ एक बड़ा बुत छोड़ दिया। और मुफस्सरीन ये भी कहते हैं कि कुल्हाड़ी उसके हाथ ने पकड़ा दी, ताकि इससे पूछें कि ये क्या हुआ है, क्योंकि वो तो बुतों की पूजा करते थे ना। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है क्या किया कि कहा कि शायद वो इसकी तरफ जो है वो रुजू करें, कि वो अगर पूछना चाहेंगे तो इससे फिर पूछेंगे कि बड़े बुत के होते हुए या बुतों के होते हुए ये सारे बुतों को क्या हो गया। कालू मन फाल हाजा बि आलिहतिना इन्नहु लमिन अज़्ज़ालिमीन, उन्होंने आकर जब बुतों का ये हाल देखा तो कहने लगे कि हमारे खुदाओं का ये हाल किसने कर दिया। मन फाल हाजा बि आलिहतिना, कि किसने कर दिया ये हमारे माबूदों के साथ। इन्नहु लमिन अज़्ज़ालिमीन, ये तो कोई बड़ा ही जालिम था। कालू समेना, उसमें से बाज लोग बोले, समेना हमने सुना, फतन फाता वो इसका रूट है, एक नौजवान को, यज़कुर हूं जो कि इनका जिक्र कर रहा था, युकालू लहू इब्राहिम, जिसका नाम इब्राहिम है। कालू कौम के लोग बोले, फातू बही, ला उसको पकड़कर, अला आयुनिन नासी, लोगों की आंखों के सामने, ताकि सारे लोग देखें, उसको पकड़ के लाओ, ला अल्लाहुम यशदून, शायद के वो लोग जो हैं वो इस पर गवाह बन जाए, इन लोगों की आंखों के सामने उसको ले आओ ताकि वो देखें, ताकि वो गवाह बने कि इसकी हम कैसे खबर लेंगे। पालू, उन्होंने पूछा, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने पूछा, अंता फालता हाजा, क्या तूने ये किया है, बे आलिहतिना, हमारे माबूदों के साथ, या इब्राहिम, ए इब्राहिम, काला बल फालहू, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि उसने किया है, कबीरहुम, इनके सरदार ने, जो इनका सबसे बड़ा है, हाजा, उसने ये किया है। फसअलूहुम, इन्हीं से पूछ लो, इन कानू यंतकून, अगर ये कुछ भी जो है ये बोलते हैं। तो अब यहां पर जो है, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मजमाए आम में लाया गया और इनसे पूछा गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा गया कि क्या तूने जो है ये किया है, तो आपने कहा ये काम तो इस बड़े बुत ने किया है, तो अगर ये टूटे हुए बुत बोलकर बता सकते हैं तो जरा इनसे पूछो तो सही। तो ये जो इनका अंदाज है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, तो ये आपने जो है वो इतराज के तौर पर किया, ताकि कौम के लोगों को ये बात पता चल जाए कि ये बुत बेजान हैं, बेबस हैं, और ये माबूद नहीं हो सकते, ये माबूद नहीं हो सकते। तो इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है उनको ये बात समझानी चाहिए कि इन्हें पता चल जाए ये आजीज और बेबस बुत जो है इनकी बंदगी नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए कहा कि जो है वो इसने किया है और जरा इनसे पूछ लो। तो ये जो है ये आपका जवाब जो था ये उनको उनको जो था बताना था बुतों की बेबसी, और साथ ही उनको उनका जो है वो मजाक उड़ाना था कि जो बेबस हैं, जो ये तुम्हारे पत्थर के तराशे बुत हैं, तुम उनकी इबादत जो है वो कैसे करते हो। फरजाऊ इला अनफुसेहिम, ये सुनकर वो अपने जमीर की तरफ लौटे। फकालू, फिर वो दिलों में कहने लगे, इन्नकुम अंतुम जालिमून, वाकई तुम खुद ही जो है वो जालिम हो। सुम्मा नुकिसु अला रऊसेहिम, नुकिसु नून काफ सीन जो है इसके मानी होते हैं कि किसी चीज का जो है वो उल्टा हो जाना, ऊंधा हो जाना। नून काफ सीन जो है इसके मानी है किसी चीज को इस तरह उलट देना कि इसके पांव ऊपर हो जाएं और इसका सर जो है वो नीचे हो जाए। सुम्मा नुकिसु अला रऊसेहिम, फिर क्या हुआ कि फिर झुका लिया उन्होंने अपने सरों को। बाज ने इसका ये भी तर्जुमा किया है, मगर फिर उनकी मत पलट गई कि फिर क्या हुआ कि फिर बिल्कुल जो है यानी इस तंबीह के बाद थोड़ी देर के लिए उन्होंने आंखें खोली, लेकिन फिर वो औंधे हो गए और क्या कहने लगे, लकद अलिमता, तहकीक तू जानता है, मा हाउला यंतकून, कि ये बोलते भी नहीं है, कि ये बुत तो बातें नहीं करते, इनसे कैसे पूछें। पाला फताबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफाउकुम शैय वला यदुर्रुकुम। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मौका को गनीमत समझा और फिर दावा किया, उनको तौहीद की दावा दी, कहा कि अफा ताबुदूना, कि क्या पस तुम इबादत करते हो, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, तो अल्लाह को छोड़कर तुम इन बुतों की इबादत करते हो, मा ला यनफाउकुम शैयन, जो तुम्हें कुछ भी नफा पहुंचा नहीं सकते, वला यदुर्रुकुम, और ना ही तुम्हें कुछ नुकसान कर सकते हैं। उफिल्लकुम, तुफ है तुम पर, तो उफ जो है ये क्या है यानी अफसोस का इजहार करने के लिए है। वैसे ये किसे कहते हैं, नाखून के तराशे को, नाखून की मैल को, कान की मैल को, किसी बहुत ही हकीर और मामूली चीज के लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर इसका तर्जमा मुफस्सरीन ने जो है वो क्या किया है, मुफस्सरीन ने इसका तर्जमा किया है कि तुफ है तुम पर, वालिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, और तुम्हारे इन माबूदों पर जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर पूजा करते हो। तो उफिल्लकुम, तुम पर अफसोस है, तुफ है, वालिमा ताबुदूना, और जिनकी तुम पूजा करते हो, मिन दूनिल्लाह अल्लाह को छोड़कर। अफला ताकिलून, क्या तुम्हें कुछ भी अकल नहीं है। पालू, कौम के लोग बोले, हर रेकू, इसको जला डालो। हारा काफ जो है इसके मानी होते हैं जला देना, तो इसको जला डालो। वन सुरू, और मदद करो, हमायत करो, आलिहतकुम, अपने खुदाओं की, यानी ये जो तौहीद की दावत देने वाला है इसको तो जलाकर राख कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, और अपने बुतों की जो है वो हमायत की जाए, मदद की जाए। इन कुंतुम फाइलीन, अगर तुम्हें कुछ करना है तो ये करो। फिर अल्लाह ने क्या किया, यानी उन्होंने जो है कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जो है आग का बड़ा सा अलाव जो है वो तैयार किया गया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया। अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, कुलना या नारुकुनी बर्दाऊ व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हुक्म दिया कि ए आग ठंडी हो जा, बर्द जो है इसके मानी होते हैं ठंडा होना, तो ए आग ठंडी हो जा, व सलामन, और सलामती बन जा, अला इब्राहिम, इब्राहिम पर। मुफस्सरीन ये कहते हैं कि आग का ठंडा होना तो समझ में आता है, यानी आग जल रही थी, खत्म हो गई तो ठंडी हो गई, लेकिन उसका सलामती बनना जो है इसके क्या मानी है कि जो है वो सलामती बन गई। तो असल में बात यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जो आग थी, जो आसमान से बातें कर रही थी, दहकती हुई आग जो थी, वो सिर्फ इतनी ही नहीं कि वो ठंडी हो गई, बल्कि उसके साथ ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गुलो गुलजार बन गई, आपके लिए जो है वो सुकून का जरिया बन गई। तो ये अल्लाह का मोजा था, और अल्लाह जो है वो इसी तरह मौजजात के जरिए अपने बंदों की मदद जो है वो किया करता है। वह अरादू बही कैदन, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है फरमाते हैं कि उन लोगों ने इरादा किया था, किस चीज का इरादा किया था कि एक चाल चले, फजअलना हुमुल अक्सरीन, फिर उन्हीं को हमने नुकसान में डाल दिया। अक्सरीन जो है ये मुबालगे का जैसे सीगा है, तो हमने उनको बहुत ज्यादा नुकसान में डाला, बुरी तरह नाकाम करने वालों में डाल दिया। तो कैसे अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद की? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे लूत अलैहिस्सलाम, व नज्जैना हु, और हमने उसे बचाया, व लूतन और लूत अलैहिस्सलाम को, इलल अर्दी एक जमीन की तरफ, और फिलिस्तीन की जमीन और शाम की जमीन की तरफ इशारा है, अल्लाती बारक नफीहा लिल आलमीन, जिसमें हमने दुनिया वालों के लिए बरकतें रखी हैं। तो मादी बरकतें भी और रूहानी भी, मादी हैसियत से वो दुनिया का जरखेज तरीन इलाका है, रूहानी हैसियत से वो 2000 साल तक अम्बिया अलैहिस्सलाम का मस्कन और मदफन बनी रही। बहुत से नबी उसमें आए, वहां पे नहरों की कसरत है, फलों की कसरत है, वहबना लहू इसहाका, और हमने उसे इसहाक अता किया, किसे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, व याकूबा और याकूब नाफिला मजीद, यानी बेटे के बाद पोता भी ऐसा अता किया जिसे नबूवत से सरफराज किया गया, और नफल जायद को कहते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो सिर्फ बेटे की दुआ की थी, हमने बगैर दुआ के मजीद पोता भी अता कर दिया। तो नेक लोगों को अल्लाह ऐसे ही अता किया करता है। व कुल्लन जअलना सालिहीन, हर एक को हमने सवाले बनाया, व जअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, और हमने उनको इमाम बनाया। इमाम की जमा है अइम्मा, यहदूना, और इमाम क्या करते थे? राह दिखाते थे, बिअमरिना हमारे हुक्म से, व औहैना इलैहिम, और हमने वही भेजी इनकी तरफ, क्या? कि फेल अल खैराती, नेक काम करने की, व इकाम सलाती, और नमाज कायम करने की, व इता जकाती, और जकात देने की, व कानू लना आबिदीन, और वो हमारे इबादत गुजार बनते थे। तो अब यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि ये जो पैगंबर थे ये सारे सवाले थे, नेक थे, और नेकी में लीड करने वाले थे, बुराइयों में लीड करने वाले नहीं थे। हमारे हुक्म की अतात करते थे, नेक काम करते थे, नमाज कायम करते थे, और जकात देते थे, और थे वो हमारे बंदे। व लूतन, और लूत अलैहिस्सलाम जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, फरमाया आतेनहु हुक्मा व इल्मन, हमने उसको हुक्म और इल्म बख्शा। और इसके माने क्या है कि लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो है वो सूझबूझ अता की और इल्म से नवाजा। मुफस्सरीन कहते हैं कि उनको नबी बनाया गया, हिकमत दी गई, सही कुव्वत फैसले दी, सही कुव्वत फैसला भी अता की गई। वनजैनाहु मिनल करियाती, और हमने उसको बचा लिया उस बस्ती से, अल्लाती कानत तामलुल खबाइस, जो के बदकारियां करती थी। तो कौम लूत मुराद है, इन्नहु कानु कौमा सौ इन फासिकीन, दरहकीकत वो बड़ी ही बुरी कौम थी। वह अदखलनाहु फी रहमतिना, और लूत को हमने अपनी रहमत में दाखिल कर लिया, इन्नहु मिनस सालिहीन, वो मेरे सवाले बंदों में से था। वह नूहन, और नूह अलैहिस्सलाम, तो यही नेमत हमने नूह को भी अता की, इस नादा जब उसने हमें याद किया, पुकारा, मिन कबलू, इन सबसे पहले, फस्तजबना लहू, फस हमने उसे जवाब दिया, यानी उसकी दुआ कबूल कर ली, फनजैनाहु व अहलहु मिनल फनजैनाहु, पस हमने उसको निजात दी, व अहलहू, और उसके घर वालों को, मिनल करबिल अजीम, बड़े करबे अजीम से। तो ये करबे अजीम क्या था कि एक बदकिरदार कौम के दरमियान उन्होंने जो है 50 कम 1000 साल दावत दी, और बहुत कम लोग जो थे उन्होंने इस्लाम को जो है वो कबूल किया, तो उन्होंने अल्लाह को पुकारा, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने जो है वो ईमान लाने वालों को और उसको तो बचाया, और बाकियों को तबाह बर्बाद कर दिया। और आज के सबक की हमारी आखिरी आयत है, वनसरनाहु मिनल कौमिल लजीन कज़्ज़बू बिआयातिना इन्नहुम कानू कौमा सौ इन फ़ग़रकनाहुम अजमाइन, और उस कौम के मुकाबले में उसकी मदद की जिसने हमारी आयात को झुठला दिया था, वो बड़े बुरे लोग थे, बस हमने इन सबको गर्क कर दिया। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को भी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, कौमा सौ, और पीछे आपने जो है वो लूत अल इस्लाम की कौम के बारे में भी पढ़ा, आयत नंबर 74 में कौमा सऊ और फासिकीन पढ़ा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इन सबको हमने गर्क कर दिया। तो ये थे पैगंबर जो कि हमारे लिए रोल मॉडल हैं, जिसमें इब्राहिम अलैहि सलाम हैं, और इब्राहिम अलैहि सलाम के साथ अल्लाह ताला ने इसहाक अलैहि सलाम, याकूब अलैहि सलाम, लूत अलैहि सलाम और नूह अलैहि सलाम का जो है वो जिक्र किया है। और ये मेरे और आपके लिए रोल मॉडल हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान लाने वालों के सामने इनकी कहानियां और वाकयात को सामने रखकर ये बताया गया है कि किस तरह से इन्होंने काम किया और कैसे इनकी कौम ने सलूक किया और कैसे अल्लाह ताला ने झुठलाने वालों के साथ सलूक किया और कैसे ईमान लाने वालों को बचाया। तो हर दौर में कुफर और बातिल की कश्मकश जो है वो जारी रहेगी। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको मुत्तकीन में से, बिन देखे रब को डरने वालों में से बनाए और उन लोगों में शामिल कर ले जो कि कुरानो सुन्नत के मुताबिक चलते हैं और जिंदगी के एक एक लम्हे में रब की अतात करते हैं और रब को राजी करना चाहते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।